Assalamualaikum everybody, welcome to yet another episode of Baakhabar. Ye jo hai, ye hai episode 13. Thank you for being with us throughout this journey. 13 episode tak, thank you for your love and your support and your feedback. Jo humne pichle do episodes mein baat ki thi, wo baat ki thi specific to Pakistan's trade and its trade potential. Pakistan trade karta kya hai, kiske saath trade karta hai, and what it has to do to arrive to its full potential of exports. So ye do pichle episodes ka jo hai wo summary thi jo humne aur discuss kiya tha, wo ye discuss kiya tha ki kin mumalik ke sath Pakistan trade surplus mein hai, trade deficit mein, usko samajhne ke liye, trade deficits ko generally aur trade surplus ko samajhne ke liye, is pure important topic ko samajhne ke liye bahut zaruri hai ki hum ye samajh sake ki ek jo hamara exchange rate hai wo kya hai, wo kis tarike se determine hota hai. So ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है काफी लोगों के लिए. सो हमारी कोशिश ये होगी कि इसको बड़ा आसान तरीके से किया जाए, जो अखबारों में मुश्किल अल्फाज यूज करते हैं वो आप तक पहुंचाए जा सके कि उसका उनका असल में मतलब क्या है. सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू स्टार्ट ऑफ अगेन, वी हैव विद अस द फेथफुल एनालिस्ट हु हैज बीन विद अस फॉर द पास्ट 13 एपिसोड्स, फैज इज विद अस. तो फैज, व्हाट आई वांट यू टू स्टार्ट ऑफ इफ पॉसिबल इज के जो लोगों की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर करेंसी, द वैल्यू ऑफ द डॉलर, उसके साथ मुंसलिक जो जुड़े हुए टर्मिनोलॉजीज है वो काफी लोगों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, एंड दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट आई गेट मोस्ट ऑफन एज अ क्वेश्चन. सो इफ यू कुड स्टार्ट अस ऑफ विद द वेरी बेसिक्स.
थैंक्स अनिल फॉर द इंट्रोडक्शन. सो बेसिक्स अगर आप शुरू करें, व्हाट यू सी हेडलाइंस में जो दिखता है या अखबारों में जो दिखता है, 160 का डॉलर है या लगभग इस अमाउंट का है, वो होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट. नॉमिनल एक्सचेंज रेट वुड हैव इनकॉर्पोरेटेड प्राइस एज वेल. मैं डिटेल्स थोड़ी सी देता हूँ. अब नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच करेंसीज एक्सचेंज होती है. सो आप पाकिस्तानी रुपये को यूएस डॉलर से एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपको 160 रुपयों का एक डॉलर मिलेगा. ये तो एक सिंपल सी बात हो गई, राइट? एंड दैट्स समथिंग हर किसी को समझ में आती है कि 160 का हमें डॉलर मिल जाएगा. बट वेन कंट्रीज ट्रेड, जो हमने जैसे पिछले एपिसोड में बात करी ट्रेड के बारे में, उनको नहीं फर्क पड़ता कि करेंसीज कितने में एक्सचेंज होती है, उनको फर्क पड़ता है कि आप गुड्स कितने में एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट? अगर यूएस में कोई बैठा हुआ है खरीदने वाला, वो पाकिस्तान से कुछ खरीदना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू सी कि उसके डॉलर कितनी चीजें बाय कर सकते हैं. रियल क्वान्टिटी ऑफ गुड्स इज वॉट मैटर्स, ठीक है? तो इसके लिए NER, which is nominal exchange rate, के साथ साथ होता है real exchange rate. Real exchange rate एक कंट्री से मेजर करते हैं कि अगर US में एक टी शर्ट मिल रही है $10 की और वही चीज पाकिस्तान में मिल रही है 800 रुपए की, राइट? सो अगर आप कन्वर्ट करें, $10 वुड बी 1600 रुपए, ठीक है? और पाकिस्तानी रुपए मतलब बेसिकली ही विल बी एबल टू बाय टू शर्ट्स इन एक्सचेंज फॉर वन शर्ट अगर वो अमेरिका से खरीद रहा हो पाकिस्तान में शर्टें, ठीक है? 1600 की प्राइस, 1600 टोटल अमाउंट, 800 की प्राइस, दो शर्टें खरीद सकता है. वही शर्ट वो यूएस में खरीद रहा होगा, उसको एक ही शर्ट मिलेगी. दैट्स इज व्हाट मैटर्स, गुड्स के कितने एक्सचेंज कर सकते हैं. तो इस एग्जांपल में मैंने जैसे एक्सप्लेन करा, 1600 की यूएस में कॉस्ट करती होगी, पाकिस्तान में वही चीज 800 की होगी. तो रियल एक्सचेंज रेट होगा इसमें 2 होगा. ये बहुत सिंपल सा मैं एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है सारी चीजें. लेकिन आप ये याद रखिए दैट यू डोंट ट्रेड विद जस्ट वन कंट्री. चलो सही है, यूएस इज अ बिग ट्रेड पार्टनर फॉर अस, लेकिन यूएस डॉलर के अलावा हमें और भी सारे कंट्रीज के साथ देखना पड़ेगा कि हम किसके साथ ट्रेड करते हैं, उसके साथ रियल एक्सचेंज रेट उन सब कंट्रीज के साथ क्या क्या होगा, और फिर एक कोई कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर दैट फिट्स आउट आवर एक्सचेंज रेट, ठीक है? ये सब हमें वैसे इतने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. पॉइंट इज, स्टेट बैंक एक इंडेक्स रिलीज करता है just like any other central bank in the world, जो कि सारी ये real exchange rates को incorporate करके एक real effective exchange rate report करते हो, ठीक है? REER कहलाता है ये, REER. अगर आप अखबारों में देखें REER, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि this is an index which represents कि आप कितने goods and services exchange कर सकते हैं from all the your trading partners. Takes into account a lot of other things. के मतलब अगर हम चाइना के साथ ट्रेड इतना करते हैं तो उसकी वेट क्या होना चाहिए चाइना का हमारी करेंसी में. एट द सेम टाइम चाइना जो है यूएस के साथ भी ट्रेड करता है विच कम्पीट्स विद आर एक्सपोर्ट्स, के हमें शर्टें उधर बेचनी है, चाइना को भी उधर शर्टें बेचनी है. सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वी डोंट हैव टू गेट इनटू ऑल ऑफ दोस डिटेल्स. पॉइंट इज, सारी कैलकुलेशन होके एक नंबर बाहर निकलता है जो कि कहलाते हैं रियर, तो ये आई थिंक ये तीन टर्मिनोलॉजीज जानना अच्छा है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है 160 जो हम सुनते हैं, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है एडजस्ट द 160 फॉर यूनिट्स आप कितने खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, और उसमें फिर तीसरा जो होता है सारे कंट्रीज के साथ लेके कि आप कितने यूनिट्स खरीद और बेच सकते हैं विद ऑल द योर ट्रेडिंग पार्टनर्स दैट्स रियल, और ये इंडेक्स होता है 100 से शुरू हुआ था 2010 में, बट लेट्स टॉक अबाउट इट अ बिट मोर।
ओके सो 2018 से जो है ना लोगों ने ज्यादा इस पे नजर रखना शुरू कर दी है कि क्या हो रहा है डॉलर के साथ, जो है ना बढ़ रहा है, क्यों इतना एकदम से बढ़ा। सो इन टर्म्स ऑफ रियर एंड नियर व्हाट हैज हैपेंड टू द डॉलर पोस्ट 2018 सो दैट पीपल हैव एन आइडिया।
अब वो इसलिए खबरों में आता है बिकॉज इट्स उसमें शुमार होता है कि वन ऑफ द रीजंस हमारी ट्रेड पिकअप नहीं की है बिकॉज हमारी वैल्यू ओवर वैल्यू हो गई थी पीकेआर की या फिर ज्यादा अप्रिशिएट कर गई थी और हमने डॉलर जो है कांस्टेंट रखा हुआ था। सो डॉलर कांस्टेंट रखा हुआ था हमने नॉमिनल एक्सचेंज रेट, लेकिन जो वैल्यू जिस चीज की बढ़ रही थी वो था रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। अब इसका मैं सिंपल था आपको एक थोड़ा समझने के लिए एक चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि जब हमारी करेंसी अप्रिशिएट करती है ठीक है नॉमिनल एक्सचेंज रेट जो है वो नीचे जाता है ठीक है। अगर हमारी पीकेआर की वैल्यू बढ़ रही है तो 160 के डॉलर के बजाय हमें 150 का डॉलर मिल जाएगा राइट, इज दैट्स सिंपल इनफ। इसको बोलते हैं अप्रिसिएशन। अगर डिप्रिसिएशन हो रही होती है वो 160 से 170 चले जाएगा, सो वैल्यू गिर जाएगी हमारे पीकेआर की बिकॉज वी विल बी एबल टू बाय लेस डॉलर्स। अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में उल्टा होता है, जब वो वैल्यू बढ़ रही होती है उसकी 100 पे वैल्यू बेसिकली 2010 में ऐसी रखी थी उन्होंने राइट इंडेक्स वैल्यू, तो आप एक बेस ईयर लेते हैं, उन्होंने बोला 2010 में 100 हो गई वैल्यू। अब अगर ये 100 से 110 जाती है दैट्स एन अप्रिसिएशन ऑफ रियल ठीक है, उल्टा होगा उससे कि हम वो 160 से 150 पे जाएंगे तो वो अप्रिसिएशन होगी, रियल में होता है 100 से 110 पे जाएंगे तो वो अप्रिसिएशन होगी। तो बेसिकली दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, इतना ही समझने की जरूरत है क्योंकि अगर आप हमने पहले भी दिखा चुके हैं जब हमने IMF की बात की थी आई थिंक एपिसोड 4 में, तो हम उसमें बोल रहे थे कि रियर और नॉमिनल एक्सचेंज रेट डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहा था ड्यूरिंग PMLN's टाइम ठीक है। अब वो क्या क्यों हो रहा था कि हमारी इन्फ्लेशन तो थी कंट्री में ठीक है। अब इन्फ्लेशन अगर होती है तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज आर बिकमिंग मोर एक्सपेंसिव ठीक है, तो आपको टेक्निकली आपकी करेंसी गिरनी चाहिए बिकॉज आपकी वैल्यू ऑफ द पीकेआर इज गोइंग डाउन व्हाट यू कैन बाय विद दैट। लेकिन हमने डॉलर को जो है 100 102 105 किसी पे रखा कोई तीन साल तक एंड तो जब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट को चेंज नहीं होने दे रहे और हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट हो रहा है, यू आर बिकमिंग वर्स ऑफ, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज आर बिकमिंग अनकम्पेटिटिव। और ये वैसे नहीं समझ में आता वैसे लोगों को, अगर देखेंगे डॉलर 100 पे ये अच्छा सही है कुछ चेंज नहीं हो रहा फिट सीन है, लेकिन दैट्स नॉट व्हाट वाज हैपनिंग इन एक्चुअलिटी। एंड एक्चुअलिटी आपकी गुड्स एंड सर्विसेज वर बिकमिंग अनकम्पेटिटिव। तो इसलिए 2018 के बाद जब ऑब्वियसली नई गवर्नमेंट आई एंड दे हैड टू थिंक अबाउट कि अच्छा इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो PMLN के आखिरी साल में शुरू हो गया था बिकॉज दे रियलाइज ये सस्टेनेबल नहीं है, तो उन्होंने फिर PKR को आई थिंक 130 तक लेके गए थे 100 से or something like that during their last finance minister's round, ताकि आप जो real जो appreciate हो रहा था हमारा real effective exchange rate उसको match कर सकें nominal exchange rate के साथ। तो इसलिए basically जरूरी है कि आप दोनों को साथ साथ लेके चलें real effective exchange rate को और nominal exchange rate को, and that's why it's been in the news.
Great. So, लोगों को 2018 की भी कहानी समझ में आ गई क्योंकि सबसे ये फेवरेट टॉपिक है जब भी डॉलर डिस्कस होता है। वी विल गेट इनटू दैट लेटर ऑन इफ यू हैव टाइम बिकॉज़ दैट्स समथिंग दैट्स स्लाइटली पॉलिटिकल एज़ वेल। जो रियर के बारे में है वो लोग जो काफी पढ़ते हैं देयर इज अ कपल ऑफ मिथ्स रिगार्डिंग द रियर। यू हैव स्पोकन अबाउट दिस इन द पास्ट एज़ वेल इन द पास्ट एपिसोड। आई जस्ट फाउंड कि यार ये एपिसोड वुड मेक इट वेरी पर्टिनेंट वेरी रेलेवेंट कि किसी को अगर समझना हो, जैसे रियर के बारे में कहते हैं कि अगर रियर जो है वो 100 से ऊपर है तो करेंसी ओवर वैल्यूड है, राइट? इज दैट राइट, इज दैट रॉन्ग, व्हाट इज द काइंड ऑफ यार्डस्टिक, व्हाट इज द काइंड ऑफ फैक्ट्स अबाउट द रियर दैट पीपल शुड कीप इन माइंड।
मतलब यार्डस्टिक या फैक्ट से पहले समझे ना कि मतलब ये बनाया कैसे इंडेक्स। आई ट्राई टू एक्सप्लेन अ बिट कि उन्होंने 2010 को बेस ईयर लेके बस बोला कि इसके आगे हम देखेंगे 100 से चेंज कैसा होता है ये नंबर। ठीक है. सो अगर आप देखें रियर को 110 पे, तो आप ये बोल सकते हैं कंपेयर टू 2010, राइट, 11 साल पहले से अब जाके जो है वैल्यू बढ़ी हुई है. सिर्फ ये बोल सकता हूं मैं, इफ इट्स एट 110 कंपेयर टू 2010, आई कैन से 10% वैल्यू जो है उसकी अप्रिशिएट कर चुकी है. आई कांट से दैट इट्स ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड. दिमाग में लोग वैसे ही सोचते हैं कि अच्छा नहीं, 2010 से अगर वैल्यू बढ़ गई है तो ओवरवैल्यूड है. हम आप या मैं नहीं बोल सकते कि 2010 में हमारी करेंसी ओवरवैल्यूड थी कि नहीं थी, राइट. यू डोंट नो इफ इट वाज एट इट्स ट्रू वैल्यू इन 2010. तो फिर अब जाके अगर ऊपर जा रही है, अब जाके अगर ऊपर चले गई है, तो अब ओवरवैल्यूड होगी. सो इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ऑल यू कैन से इज के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप हिस्ट्री से अपने माजी से कंपेयर करें तो आपकी वैल्यू बढ़ी हुई है या गिरी हुई है, दैट्स व्हाट यू कैन से. एक जो आप चीज बोल सकते हैं ना, व्हिच इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, के डायरेक्शंस ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियर के डायरेक्शंस कैसे चल रहे हैं. हमारा मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट आया है कोई मई 2019 में, उससे पहले लाइक वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द IMF, तो इसलिए मई 2019 मार्च ऐसी कुछ में हमने उसको मार्केट बेस्ड करना शुरू कर दिया. इसकी थोड़ी देर में हम बात करते हैं कि मार्केट बेस्ड होता क्या है. लेकिन उससे पहले हम मैनेज करते थे अपनी करेंसी, राइट. मैनेज हम वी ट्राई टू कीप इट टू 100, देन वी ट्राई टू कीप इट टू 130, और फिर जब हमने मार्केट बेस करा वो 170 टच करने को चला गया था. तो ये दैट इज बेसिकली सबसे पहले जो है आपका रियर चेंज होगा, विच इज इन एक्चुअलिटी आप गुड्स एंड सर्विसेज कितनी एक्सचेंज कर सकते हैं बाकी कंट्रीज के साथ, और फिर जाके मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट विल शो यू द आउटपुट ऑफ दोस चेंजेस. ठीक है, ये बस आपके समझने की बात है. ये इन मिथ्स में ना पढ़े कि 2010 में 100 था, अब जाके 102 हो रहा है या 103 हो रहा है तो ओवर वैल्यू है करेंसी. कभी कभार आई थिंक एक जमाने में जब 90s पे पहुंच गया था रियर, सब बोल रहे थे बहुत अंडर वैल्यूड है करेंसी. यू कैन नॉट मेक स्टेटमेंट्स लाइक दैट. फिर जाके जब वो 90 से 95 टच करना शुरू हुआ तो उस बार के ओवर वैल्यू हो गया. सो पीपल जस्ट आई थिंक वो मिसकंसीव करते हैं कि अगर ऊपर जा रहे हैं रियर तो उसका मतलब ओवर वैल्यूड है, नीचे जा रहे तो अंडर वैल्यूड है. That's not what it means. उसको आपको यार्ड स्टिक जो आपको रखनी है दिमाग में वो है 2010 में 100 होता था, उससे ऊपर या तो आपकी करेंसी की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि आप वो यू नो इन वैल्यू टर्म्स उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो तभी वो 110 को जा रहा है, या फिर आपकी करेंसी की डिमांड इतनी गिर गई है कि वो 90 को जा रहा है. That's all you can say compared to 2010. उसके अलावा इतनी ऐसा चाह कोई उससे आउटपुट नहीं ले सकते.
We started off this episode थोड़ा सा ना differently. पहले हमने बोला कि ये जो concepts हैं, जो terminologies हैं, जो आप ज्यादातर सुनते होंगे, जो आपका मतलब दिल करता है कि मैं अखबार बंद कर दूं या वेबसाइट बंद कर दूं, पहले तो इनको साइड पे कर लेते हैं. ठीक है, रियर हो गया, नियर हो गया, नाउ यू अंडरस्टैंड these terminologies and you understand what the circulating myths around them are. अब जो normal आम इंसान जो भी ये सुनता है कि आप तो आप बैंक में काम करते हैं या आपका फाइनेंस से दूर दूर से कोई भी ताल्लुक होगा, मुझे तो या किसी को भी मुझे लगता है इस इंडस्ट्री में पहला सवाल ये आता है, यार डॉलर कहाँ जाएगा, डॉलर उठा लूं 172.8 लग रहा है मुझे, तो मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई शख्स जो कि जिंदा है वो ये बता सकता है, चाहे उसकी चार्टिंग कितनी भी स्ट्रांग हो. समझना सिर्फ ये जरूरी है कि डायरेक्शन ऑफ द डॉलर कहाँ है एंड व्हाट डिटरमाइंस सप्लाई एंड डिमांड. इसको जितनी आसानी से फैज इफ यू कैन एक्सप्लेन कि यार देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स आई नो व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, अगर बेसिक तरीके से अगर आप समझा सकें कि सप्लाई और डिमांड ऑफ द डॉलर कैसे इंटरैक्ट करती है और किन किन फैक्टर्स पे डॉलर जो है ना उसकी प्राइस बेस्ड है.
ग्रेट क्वेश्चन. ये समझें कि उसके पीछे क्या क्या चीजें हैं rather than saying कि हाँ डॉलर किस उसमें जाएगा. सबसे पहले तो आप समझें कि मैंने मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की जो अभी बात की थी, आपको वो फर्क आपकी करंट अकाउंट में बहुत आसानी से दिख जाएगा. करंट अकाउंट की भी हमने एपिसोड 4 में बात की थी कि इट यू नो कंप्राइजेज ऑफ एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स, फिर प्राइमरी इनकम आती है, सेकेंडरी इनकम आती है, और आपको फिर करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस का पता चल जाता है पाकिस्तान में. जो ये जब इनको कंट्रोल कर रहे थे एक्सचेंज रेट को 100 के अराउंड, उस वक्त आप देखेंगे आपके करंट अकाउंट डेफिसिट्स बहुत बढ़ रहे थे और आपका रियल जो है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वो भी बढ़ रहा था. एज सून एज दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग इट टू मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, आप वो भी देखेंगे पूरी करंट अकाउंट डेफिसिट कम होना शुरू हुआ. आई थिंक इन मे टिल मे वी हैड एक्चुअली हैड अ सरप्लस, जून में चेंज हो जाएगा मेरे ख्याल से, लेकिन till at least May, you had a current account surplus because आप पूरे market based exchanges पे चल रहे हैं. आपकी currency जो है goods and services की जो export होती है, for example, one factor is that उससे improve हो रही है. अब सारे demand and supply आपने mention करी dollars की, वो समझने के लिए मेरे हिसाब से best चीज जो देखने की होती है, and this is by no means the perfect measure क्योंकि इसमें और भी factors होते हैं. और फैक्टर्स के भी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अपने अकाउंट में कितने डॉलर्स हैं, उसमें आगे ऊपर कितने हो रहे हैं, नीचे कितने हो रहे हैं, दैट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ डॉलर्स. ठीक है, तो सबसे पहली बात जो समझने की है वो ये है कि आप समझे जून 2020 में आई थिंक आपकी कोई 13.7 billion की स्टेट बैंक की रिजर्व्स थी. ठीक है, ये बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू द पास्ट, लेकिन लेट्स सी ये इस साल पिछले 11 महीने में कैसे इवॉल्व हुई है. पहली बात, एक्सपोर्ट्स डिड रीजनेबली वेल. 11 महीने में हमारी कोई 28.5 billion की एक्सपोर्ट्स हो गई, लेकिन इम्पोर्ट्स एट द सेम टाइम हमने बोला है कि राइजिंग इम्पोर्ट्स इज नॉट नेसेसरीली बैड, वो भी जो है कोई 54 billion के करीब आई. तो आपकी एक्सपोर्ट्स आई, इम्पोर्ट्स आई, उसके साथ आपकी रेमिटेंसेस कि जितना चर्चा चलता आया पूरे साल, वो भी कोई 27 billion के करीब रेमिटेंसेस आ गए. बाकी सारी छोटी छोटी चीजें करंट अकाउंट की जो हमने पहले बात करी है, प्रॉफिट रिपेट्रिएशन, कभी ग्रांट्स, एड, छोटी छोटी जो बाकी चीजें हैं, वो कोई 700 मिलियन के करीब उसका फर्क पड़ा. तो अगर आप लगभग देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेके चलेंगे और उसमें देखेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट का इंपैक्ट क्या आया, तो एक्चुअली इस साल करंट अकाउंट सरप्लस का आया है कोई 366 मिलियन का. उसके ऊपर फिर दूसरी साइड पे हमने ये भी बात कर चुकी है कि करंट अकाउंट का सरप्लस या डेफिसिट नीड्स टू बी फाइनेंस्ड बाय द फाइनेंशियल अकाउंट. फाइनेंशियल अकाउंट में हमने पहले बात की है FDI आती है. ठीक है, पिछले एपिसोड में हमने इसकी काफी सारी बातें की है. उसमें आती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे डालने, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, वो बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट्स हो गए. स्टॉक्स में अगर PSX में पैसे डाल रहे हैं, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आ जाती है. तो FDI ले लें, थोड़ी CI पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ले लें, उसके ऊपर लोन्स जो आते हैं आप बाकी कंट्री से लेते हैं या फिर उनको रिपे करते हैं, वो सब उसमें आ जाता है. That will make up the financial account. और उसका भी जो है positive contribution कोई 4.5 billion के करीब था to the reserves. तो आप लगभग पूरा सबको add up करके देखेंगे तो आप देखेंगे 4 billion की reserves बढ़ी हैं इस साल स्टेट बैंक की. ठीक है, अब मैं I'll break this down a bit more. लेकिन 4 billion और total financial account और current account के को add करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा 1 billion का फर्क आ रहा है. अब वो 1 billion वही चीज है जो हमने पहले भी एक जमाने में बात करी है, नेट एरर्स एंड ओमिशंस होते हैं, जो कि लिटरली मींस के लोग सूट केसेस में डॉलर्स या तो बाहर लेके जा रहे हैं या कंट्री के अंदर लेके आ रहे हैं. तो अगर 1 billion का भी हमें डेफिसिट दिख रहा है इसमें, इसका मतलब $1 billion कोई पाकिस्तान से कैश में गए हैं जो कि अकाउंट फॉर नहीं कर सकते ऑफिशियली स्टेट बैंक की रिजर्व्स में. तो अब इसको इफ आई स्टेप बैक और ये सारे नंबर्स के बारे में सोचें, तो आप डिमांड फॉर डॉलर्स आपकी आती है फ्रॉम इम्पोर्ट्स. ठीक है, आपको बाहर से चीजें खरीदना, उनको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी. तो सबसे बड़ी आपकी डिमांड $54 billion की डिमांड जो है आपके पास इम्पोर्ट्स है. आपकी सप्लाई ऑफ डॉलर जो आते हैं वो एक्सपोर्ट से आते हैं, वो FDI से आते हैं, वो रिमिटेंसेस से आते हैं, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से आते हैं. अगर आप IMF से लोन ले रहे हैं या फिर किसी और मुल्क से, चाइना से मुल्क, अगर चाइना से भी ले रहे हैं, तो वो आपका सप्लाई ऑफ डॉलर आ जाता है. ठीक है, तो सप्लाई ऑफ डॉलर्स और डिमांड ऑफ डॉलर्स, ये सब जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की मूवमेंट में आपको बहुत क्लियरली नजर आ जाएगा. तो ये पूरा अगर हम चार्ट लगाएं, एंड यू विल सी कि इस साल एक्सटर्नल फ्लोज हैव बीन पॉजिटिव इन पाकिस्तान. ठीक है, तो नेट नेट आपकी रिजर्व्स 4 billion से बढ़ी. इसलिए आज जो आपके कोविड के दौरान आप देखा होगा आपका एक्सचेंज रेट थोड़ा सा गिरा था, और वो इस पूरे साल जो है कंसिस्टेंटली बढ़ा है, एटलीस्ट टिल में. अभी वापस थोड़ा गिरना शुरू हो गया है बिकॉज आपकी जैसे ही इकोनॉमी वापस आ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा बिकॉज आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ चुकी हैं, विच मीन्स योर डिमांड फॉर डॉलर्स विल बी हाई, विच मीन्स डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और इसलिए पाकिस्तानी रुपी गिरेगा आगे जाते हुए. पर अगेन, आपको जब भी देखना हो कि कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, आप सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें. उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करेगा. इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट टू बी एग्जैक्ट, कि पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टर बाहर से पैसे डालेगा उसकी उसको रिटर्न क्या मिलेगा, वो भी एक इन्फ्लुएंस करता है एक्सचेंज रेट पे. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने अभी बात करी, वो बॉन्ड्स इंक्लूड करती है, तो इन अ वे अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फिल को आप, या हमने 2019 में बहुत देखा था जब आप 12-13% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे थे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स वेंट रियली अप, लेकिन यही फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वेंट डाउन जब इंटरेस्ट रेट गिरा कोविड की वजह से. तो इंटरेस्ट रेट आप ले लें, आप इन्फ्लेशन ले लें, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से जो वैल्यू है वो गिरती और या तो गिरती है या ऊपर जाती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. आप डेमोग्राफिक्स देख लें, पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है कंट्री में, ठीक है, एज डिपेंडेंसी कितनी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एक्सचेंज रेट डिटरमिन करने में जाती हैं. बट कंट्री की आउटलुक कैसी है, राइट? अगर मेरी पीकेआर की डिमांड बढ़ेगी, अगर पीकेआर का सप्लाई बढ़ेगा, अगर पॉपुलेशन ज्यादा ग्रो हो रही होगी और स्टेट बैंक को ज्यादा पैसा प्रिंट करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये चीज तक इन्फ्लुएंस करती है आपके एक्सचेंज रेट को. सो बहुत सारी चीजें, फिस्कल डेफिसिट आप देख लें, अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेंगे तो फिर भी प्रिंट करना पड़ेगा पीकेआर, पीकेआर का सप्लाई पड़ेगा तो फिर एक्सचेंज रेट गिरेगा. सो इंस्टेड ऑफ वी जस्ट लिस्ट ऑल द फैक्टर्स डाउन इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ देम, लेकिन बस दिमाग में रखने की ये बात है कि जैसे आपने बोला कि 172.8 की प्रेडिक्शन आई है डॉलर की, इट इज almost impossible to make those kinds of predictions because bahut se moving parts hain aur internationally globally moving parts hain. To aap ye nahi keh sakte ki sirf agar pakistan ke for example exports upar ja rahe hain to aapka exchange rate acha hoga. Yes, it is a big factor into external inflows into the country, but not the only factor.
Wonderful explanation, Faiz. Ye matlab this has helped me as well, but just लोग, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, लोगों को समझाने के लिए बड़ा आसान तरीकेकार ये है अगर मैं कहूँ कि हम लोग एज पाकिस्तान आर सेंट्रल बैंक कैन नॉट प्रिंट डॉलर्स, तो आपके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं डॉलर करने का, हासिल करने का. सो आप डॉलर्स कहाँ कहाँ से लाएंगे? आप लाएंगे एक्सपोर्ट से. जब आपके पास डॉलर्स आएंगे, जब आप अपनी चीजें बाहर भेजेंगे और बेचेंगे तो डॉलर्स आएंगे. If you get FDIs, bahar ke mamalik, bahar ki companies, if they invest in your country, that's how dollars come in. Remittances, is pe hum log wapas aate hain because this is a very hot topic aur jo hai na, this is slightly political as well. Ye teesra option aa gaya. And fala fala, loans aa gaye, bahut sari cheeze aa gaye. I'm just trying to tie this up because hum logon ne ab jo jaake 13th episode pe in cheezon ki baat karna shuru ki hai is because isse pehle aane wale topics, whether it was balance of payments, whether it was trade, whether it was the IMF, in sari these, all of these things are the moving parts also that Faiz speaks about. Ki inko samajhna bhi zaruri hai because they have an impact. Printing of money, the reliance on the central bank for printing money. Population growth ki baat, bahut achhi baat ki. I forgot that part of that, and that's easy to forget, I think, for a lot of people. When you print a lot and aapki currency devalue ho sakti hai. And aapke phir dollars ki jo demand hai, jo aapko dollars pay karne hai jinko, that's primarily what your imports are related to. So import cover wagaira ye sari cheez rakhna. So I think for most things, जब आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है डॉलर ऊपर नीचे क्या हो गया, आप कोई टेक्निकल एनालिस्ट या चार्टिस्ट या कोई बैंकर तो है नहीं, आपका काम ट्रेड फाइनेंस तो है नहीं, हर रोज सुबह को आपको डॉलर का रेट तो देना नहीं है किसी को, आपको समझना ये जरूरी कि अगर कोई चीज चल रही है तो उसके पीछे क्या क्या मूविंग पार्ट्स हैं. अच्छा, मुझे ये चीज पिक्चर अब क्लियर हो गई है. दिस इज व्हाट हैज बीन इन द न्यूज. फैज हैज ऑलरेडी टोल्ड यू, आप रिजर्व्स के नंबर पर नजर रखें और इन 4-5 चीजों की नजर रखें. It'll help explain, it'll help you uncover कि अच्छा ये क्यों हुआ है या आगे क्या होते हुए लग रहा है. बाकी you don't have a mystic ball to uncover के 172.93 पे डॉलर जो है वो नवंबर में जाएगा, ये तो आई थिंक बहुत मुश्किल है. अब आ जाते हैं आखिरी चीज पे जो मुझे लगता है, एंड करेक्ट मी बिफोर इफ आई मेड एनी मिस्टेक्स इन द एक्सप्लेनेशन फेस. अब जो मेन मुझे लगता है जो हॉटेस्ट टॉपिक, वो हॉटेस्ट टॉपिक है रेमिटेंसेस का, और वो है कि तकरीबन 30-31 बिलियन का फिगर है जो इस साल में आना है रेमिटेंसेस का. रिकॉर्ड ग्रोथ है, हर रोज आप न्यूज पर सुनते हैं. एक तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, शुड बी बेसिक के भाई बाहर से डॉलर आता है आपके पास तो सप्लाई बढ़ती है. बट व्हाट इज दिस हैपनिंग ऑन द बैक ऑफ, क्या मामला चल रहे हैं रेमिटेंसेस के, and how does this affect generally Pakistan?
नहीं, जस्ट टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया, स्पॉट ऑन इन टर्म्स ऑफ द रीकैप. रेमिटेंसेस आई थिंक आर सुपर इम्पोर्टेंट, मतलब सिर्फ और टॉपिक ही नहीं है. जब आप पाकिस्तान के देखें तो मैंने बाकी जो इंटरव्यूज एक्सेट्रा किए हैं उसमें मैंने बोला है रेमिटेंसेज आर द सेविंग ग्रेस ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज विदाउट रेमिटेंसेज आपकी एक्चुअली आई थिंक ये मैथ हो चुकी है कि आपकी रियल इनकम्स वुड नॉट बी पॉजिटिव विदाउट रेमिटेंसेज. सो रेमिटेंसेज जीडीपी में ऐसा काउंट नहीं होती जो बिकॉज इट इज इनकम अर्न अब्रॉड, तो उसको काउंट होती है जी एन पी में, जो कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हमें फर्क समझने की जरूरत नहीं है, एंड में पाकिस्तानियों के डोमेस्टिकली पाकिस्तानियों के जेबों में पैसे जाते हैं बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेज, ठीक है, जिससे आपकी डिमांड बढ़ती है कंट्री में. बिकॉज अगर बाहर से मेरी फैमिली मुझे पैसे भेज रही है पाकिस्तान में, आई कैन स्पेंड इट ऑन पाकिस्तानी गुड्स ओवर हियर. तो पहली बात तो है रेमिटेंसेज आर सुपर इंपॉर्टेंट टू कॉम्प्लीमेंट इनकम्स इन पाकिस्तान. एक और चीज जो है, दे आर टिपिकली शॉक एब्जॉर्बर्स, कि पाकिस्तान की अगर मईशत इतना अच्छा नहीं कर रही होगी, 2018-19 में यही हो रहा था कि आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, तो उस वक्त रेमिटेंसेज फिर भी आते रहे, बिकॉज बाहर के ममालिक में वही मसले नहीं हो रहे जो पाकिस्तान में हो रहे हैं. कोविड इज अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन कोविड के अलावा अगर आप देखें कि रेमिटेंसेज विल प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी थ्रू आउट, ठीक है, तो उसको शॉक एब्जॉर्बर की एक इसकी क्वालिटी होती है रेमिटेंसेज की. अब समझते हैं कि रेमिटेंसेज आते कहाँ से हैं, ठीक है. पाकिस्तानी कोई 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मोस्ट ऑफ देम इन द जीसीसी, कोई 50% उधर हैं, फिर जाके यूके में बहुत सारे हैं, उसके बाद यूएस में आते हैं, और यही सारी कंट्रीज हैं जहां से हमें पैसा भी सबसे ज्यादा आता है. टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि 2021 में इतना चर्चा क्यों चला है रेमिटेंसेज का, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड, तो 2019 में कोई 22 बिलियन के करीब आपके रेमिटेंसेज आए थे, ठीक है. But every year you're setting a record, तो वो बोलना थोड़ा बेकार है कि उस जमाने में one of the highest ever remittances. उसके बाद वापस जब COVID hit हुआ तो सबने बोला 2020 में तो remittances बहुत नीचे जाएंगे, you know there are layoffs in the GCC, लोगों को jobs छोड़ के वापस आना पड़ रहा है, US में अपने मसले चल रहे थे, UK में और मसले चल रहे थे COVID के, तो remittances कम हो जाएंगे आखिरी 3-4 महीने में of the fiscal year that ends in June 2020. लेकिन अगेन रेमिटेंसेज टर्न्ड आउट टू बी द शॉक एब्जॉर्बर, अन्य वहां पैसा है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेज. आई थिंक इट वेंट अप बाय 6% और समथिंग इन 2020, या सो 6%, 23.1 बिलियन रेमिटेंसेज आए पिछले साल. फिर था इस साल नहीं नहीं वो बस यू नो व्हेन पीपल वर लूजिंग देयर जॉब्स इन जीसीसी, उनके उधर के अकाउंट में जो आखिरी पैसा था वो वापस भेज रहे हैं, ये भी बात चली थी. विच मैं ये नहीं बोल रहा कि सब गलत बातें, आई एम सेइंग ये सब होने के बावजूद रेमिटेंसेस ऊपर गए. फिर जाके 2021 में अभी तक 11th मंथ में मई में ही कोई आई थिंक द रेमिटेंसेस आर अप 30% रेमिटेंसेस आर अप, प्राइमरली आई थिंक बिकॉज माय पर्सनल ओपिनियन, ये पैसा वैसे भी आता था लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं होता था थ्रू फॉर्मल चैनल्स, ठीक है. अब जब हुंडी और हवाला थोड़े लिमिटेड हो गए ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि ट्रैवल इतना ज्यादा नहीं हो पाया, तो लोगों ने फॉर्मल चैनल्स यूज करने शुरू कर दिए. अब जबकि ट्रैवल वापस आ भी गया है, आई थिंक मोस्ट पीपल रियलाइज कि इतने बुरे नहीं है इनफॉर्मल फॉर्मल चैनल्स, तो फिर लेट्स कंटिन्यू यूजिंग दीज फॉर्मल चैनल्स. तो इसकी वजह से कोई 30% ग्रोथ हो रही है रेमिटेंसेस में, विच विल ट्रांसलेट इनटू इवेंचुअल जीडीपी ग्रोथ व्हेन पीपल स्पेंड इन पाकिस्तान, ठीक है. आपने तभी इस पे फोकस इतना कर रही है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. आप लोगों ने सुना होगा रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में, ठीक है. रोशन डिजिटल अकाउंट ने आई थिंक लेस देन 9 महीने में कोई $1.5 billion भेज, इनके थ्रू $1.5 billion आ चुके हैं पाकिस्तान में, विच इज अ मैसिव अमाउंट, ठीक है. रेमिटेंसेज अलोन आर अप बाय $6 billion इन 2021. अब $6 billion अगर आप लोगों को याद हो, IMF का लोन भी हमें $6 billion का मिला है, और ये रेमिटेंसेज आते हैं विदाउट एनी conditions, विदाउट इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स दैट आर ड्यू लेटर. तो बहुत ही ज्यादा हमें शुक्रिया करना चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानीज का इन जनरल, के यू नो आई थिंक इट विल हेल्प बूस्ट आवर इकोनॉमी अलॉट इन द फ्यूचर, एंड इट इज डूइंग दैट राइट नाउ एज वेल. रोशन डिजिटल मैंने बस मेंशन किया, उसमें हमें बाकी एपिसोड से थोड़ा सा लिंक करना चाहूंगा कि सारा का सारा पैसा जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स में आ रहा है वो सब रेमिटेंसेस में काउंट नहीं होता. आई थिंक रेमिटेंसेस का कोई 600 मिलियन तक उसका काउंट होगा, कोई 30% 32% I think is into remittances, जो अभी तक 1.5, 1.6 billion आए हैं. Two-thirds, the majority has gone into ये नया पाकिस्तान certificates, both Islamic and conventional. 180, I think 180,000 accounts खुल चुके हैं, so 180,000 Pakistanis across the world. और स्टेट बैंक की वेबसाइट पे कंट्रीज के नंबर भी लिखा हुआ है कि कितने कंट्रीज से आए हुए हैं. उन्होंने रिपोर्टिंग काफी ट्रांसपेरेंट कर दी है अब, टू जस्ट सी के इंपैक्ट कितना ज्यादा हो रहा है रोशन डिजिटल अकाउंट्स का. नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अगेन विल हेल्प द गवर्नमेंट रेज मनी एट, चले अभी रेट्स हाई है, कोई 6-7% ऑन डॉलर्स इज एन अमेजिंग रेट टू ऑफर टू ओवरसीज पाकिस्तानी, बट इट्स ऑल्सो रियली बैड रेट फॉर द कंट्री टू पे गोइंग फॉरवर्ड of interest. तो देखना पड़ेगा ये कैसे rate evolve होता है. अभी फिलहाल I think it's doing wonders for the country. जो एक wonder नहीं कर रहा वो है, आपको जिससे ज्यादा मतलब होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सिर्फ 1% of the money has come into that. We $16 million के करीब, बाकी सारा ज्यादातर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में गया है.
Right, so Roshan Digital accounts jo hain wo वैसे भी they've become the center of the news, and aisa nahi hai. I think it's a solid initiative by the State Bank. I think the State Bank वैसे भी has been taking solid initiatives. I think if there is one hero that you should take after all of these episodes is Raza Bakar Saab. Aap baqaida unke saath ja ke dekhein, they've been leading a wonderful series of initiatives that have made things a lot more streamlined, and there are a lot more exciting initiatives coming to like they're putting it in the pipeline. Ab aage dekhne wali cheez hai ke uska jo benefit hai wo kitni jaldi aata hai, ya whether we are able to maximize the potential or the political scenario hijacks these things. Baki agar main isko reverse mein le jaun, I think for this episode we've Faiz has done a wonderful job explaining ke value of dollar hai kis cheez pe based, rear kya hai, near kya hai, uske surrounding myths kya hain, and most importantly jo is value, is currency ki value ke piche hai determining factors wo kya hote hain, interlinking with all of what we've spoken about in the past as well. These episodes, please go and watch. It's just a couple of topics, but a couple of topics will help open up your view about the economy and about important topics so that you can have intelligent discussions. So I think as far as currency exchange rate is concerned, this is a good primer to have. Until the next time, until the next topic, Allah Hafiz.